अगले दिन आस्तिक की आंख बाहर हो रहे किसी शोर से खुली थे। शायद दो सर्वेंट आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। आस्तिक जब सोकर उठता है तो उसका सर बहुत भारी हो रहा था। वो आलसाती हुई आवाज में इधर उधर देखने लगता है। अरुणिमा इस वक्त कमरे में नहीं थी और उसे इस वक्त शायद परवाह भी नहीं थी। आस्तिक उबासी लेता है और उसके बाद दरवाजे की तरफ देखता है। शायद दरवाजे के बाहर ही वो दोनों सर्वेंट आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। आस्तिक ने अपनी जोरदार आवाज में कहा, दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले मैं तुम दोनों को जान से मार दूं। वो सर्वेंट जो अब तक किसी बात पर बहस कर रहे थे आस्तिक की आवाज सुनकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब आस्तिक को कोई आवाज नहीं आ रही थी। आस्तिक एक जोरदार अंगड़ाई लेता है। उसका सर अभी भी दर्द कर रहा था। वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, यार कल रात तो मैंने पी भी नहीं थी तो मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। आस्तिक ने एक उबासी ली और बेड से नीचे उतरकर खड़ा होता है। वो वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहता है, लगता है सर दर्द की टैबलेट खाकर ऑफिस जाना होगा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी आस्तिक की नज़र सामने दीवार घड़ी पर जाती है और ये देखकर उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर तो रोशनी थी, तो फिर ये घड़ी चार क्यों बजा रही है? ये सुबह के चार बज रहे हैं या शाम के चार बज रहे हैं? घड़ी में चार का समय देखकर आस्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास जाता है और अपना फ़ोन उठाता है। वो फ़ोन ऑन करता है तो देखता है उसमें उसकी मीटिंग की कॉल्स, इंपॉर्टेंट कॉल्स और कुछ मेल आई हुई है। लेकिन जब वो शाम के चार बजे का समय देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो कल रात से सो रहा था। आस्तिक अपना सर पकड़ लेता है और सोचने लगता है, मैं कल रात से सो रहा था क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ? आस्तिक अपने विचारों में ही था कि तभी उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती हैं और वो कमरे में इधर उधर देखने लगता है। जब से वो जगा है अरुणिमा नज़र नहीं आ रही है। आस्तिक का चेहरा एकदम से गुस्से से भर जाता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और अरुणिमा अंदर आती है। आस्तिक गुस्से भरी नज़रों से अरुणिमा को देखता है। अरुणिमा ने इस वक्त साड़ी पहनी हुई थी और उसके पास उसके कॉलेज का बैग भी था। आस्तिक ने जब अरुणिमा को देखा तो उसे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि अरुणिमा ने उसके साथ क्या किया है। अरुणिमा मुस्कुराते हुए अपने शोल्डर से कॉलेज का बैग उतारती है और उसे साइड टेबल पर रखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, मेरा मतलब है गुड इवनिंग। आस्तिक गुस्से में और तेज़ कदमों के साथ अरुणिमा के सामने आता है और उसके सामने खड़े होते हुए कहता है, तुमने कल रात मुझे दूध में क्या मिलाकर पिलाया था? अरुणिमा के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मन तो आपको जहर देने का करता है, पर क्या करूँ, ऐसा कर नहीं सकती हूँ, इसीलिए फ़िलहाल के लिए सिर्फ नींद की गोलियाँ दी थीं। आस्तिक गुस्से में भड़कते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद की गोली देने की? अरुणिमा अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए कहती है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं राजा साहब, आपको इसकी ज़रूरत थी। देखिए कुछ दिनों से आप ठीक से सो भी नहीं रहे हैं, ऊपर से आप मुझे लेकर भी कितना परेशान रहते हैं, फिर पृथ्वी और जानवी को दिल्ली भेजना, कीर्ति की शादी, प्रणाली के ससुराल की दिक्कत, इतनी सारी चीज़ आप एक साथ सोचते हैं, इसी वजह से आपके सर में दर्द होता है और आपको रात में नींद नहीं आती है। मैंने तो बस आपकी थोड़ी सी मदद की है। अब देखिए पूरी रात पूरा दिन आप कितने चैन से सो रहे थे और आपको चैन से सोता देख मैंने भी अपना थोड़ा सा काम निपटा लिया है। आस्तिक गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम एग्ज़ाम नहीं दोगी? कहा तो आपने मुझे ये भी था कि आप मुझसे प्यार करते हैं, पर ऐसा था नहीं ना, अरुणिमा ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आस्तिक गुस्से में टेबल पर एक लात मारता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने बैग से फ़ोन निकालकर जानवी को थैंक्स कहती है इस आइडिया के लिए। रजत का घर। रजत इस समय बालकनी में था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जी सर, मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ दिनों में दिल्ली आ जाऊँगा। थैंक यू सर, लेकिन मुझे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, बस इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं सर्विस क्वार्टर में नहीं रह सकता हूँ, कीर्ति वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होगी, इसीलिए दूसरा घर ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मिलेगा हम लोग दिल्ली आ जाएंगे। नहीं सर, वो फाइल तैयार है, बस मुझे डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। रजत अपनी बात खत्म करके अपने स्टडी रूम में आता है, पर वहाँ आते ही वो हैरान रह जाता है। कीर्ति वहाँ पर पहले से ही खड़ी थी और उसके हाथों में कुछ फाइल थी। कीर्ति रजत को देखकर हैरान हो जाती है और वो सारी फाइल टेबल पर रख देती है। रजत अंदर आते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम क्या ढूंढ रही हो? कीर्ति जल्दी से नामे सिर हिलाती और कहती है, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं ढूंढ रही हूँ, वो तुम्हें यहाँ पर सफाई करने आई थी। रजत की आंखें थोड़ी हैरानी से छोटी हो जाती हैं, क्योंकि साफ तो ये जगह पहले से ही थी और कीर्ति के यहाँ आने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे ये रद्दी मार्केट है। रजत कहता है, कीर्ति प्लीज़, तुम्हें अगर ये सब काम नहीं आते हैं तो मत करो, मैं इसके लिए सर्वेंट रख लूँगा, पर तुम साफ़ करोगी तो शायद इसे साफ़ करने के लिए मुझे आना पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम अपने घर में सबकी लाडली रही हो, इसीलिए तुम्हें ये सब काम नहीं आते हैं और मैं तुम्हें करने के लिए कह भी नहीं रहा हूँ। कीर्ति धीरे से अपना सर नीचे करती है और हामे सिर हिलाते हुए स्टडी रूम से निकल जाती है और रजत अब उस पूरे बिखरे हुए टेबल को देख रहा था। कीर्ति क्या सफाई कर रही थी उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था।
उल्टा उसने तो सारे पेपर्स को निकालकर फैला दिया था। रजत को ये जगह साफ करने के लिए करीब एक घंटा लग जाएगा। कीर्ति अपने कमरे में आती है और परेशान होते हुए बैठ जाती है। वो जल्दी से अपना फोन निकालती है और उसमें कुछ टेक्स्ट करने लगती है। कीर्ति परेशानी से अपना सर पकड़ती है और कहती है, जिस वजह से मैंने रजत से शादी की थी उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब पता नहीं मुझे कुछ सामान मिलेगा भी या नहीं। तभी कीर्ति के फोन पर रिप्लाई आता है और वो उसे देखकर रिप्लाई करती है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे वो मिल ही नहीं रहा है, अब मैं कहां ढूंढूं। सामने से कोई कुछ रिप्लाई करता है और कीर्ति उसका ओके में जवाब देती है। कीर्ति परेशान हो जाती है। पिछले 3 दिन से वो यहाँ पर थी और रजत के हर सामान को चेक करने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर ऐसा लग रहा था वो सामान उसे मिल ही नहीं रहा था।